दशमगुरु साहब के वक्त ऐसे वाक्य हुआ है कि दशमगुरु साहब ने अपने सत्संग करते हुए फरमाया, सोने का जिक्र करते हुए कहा वो बड़ी धन थी। तो आगे जमाने में आपको मालूम है कि सिखों के लिए अधिकार था गुरु से कहना, अगर कोई ऐसी बात करे तो कहो क्यों करे। उन्होंने कहा कि महाराज आपने सत्संग में सोनी का क्यों जिक्र कर दिया, ये ठीक नहीं। उन्होंने कहा अच्छा कल सुबह देखेंगे, वहां तो बैठ जाओ, कल सुबह देखेंगे, जैसा आप कहोगे दंड लगा लेना। रात को बारिश हो गई बड़ी जबरदस्त, किले की गिरना जब खाई थी वो भर गई, और 3-4 बजे सब लोग पहुंचा करते थे तो लोग न पहुंचे, बारिश से कौन गुजरे, गले गले पानी, कोई 3 बजे बिना आया, कोई 4, कोई 5, 6, 7, 8 बज गए, उसके बाद लोग आए। तो कहा क्यों भाइयों, लगाओ दंड मुझ पर जो लगाने, बात क्या करें, करे बैठो को क्यों नहीं आया जी, पानी था। कहे अच्छा पानी था, तो भाई सोनी तो कच्चे गड्ढे पर चल गई थी, माँ सामने नजर आती थी मर वो चली नहीं। अरे तुम मामूली से पानी को डूब मरना, तो यह होता तो बड़ी बात नहीं। हजूर की याद में बैठे हो, बारिश है तो साउंड बरसने दो, अच्छी बात है, कपड़े ही भीगेंगे ना, तुम तो नहीं भीगते, जब कपड़े भीगेंगे ना, तुम तो मकानों के अंदर बैठे हो अपने जिस्म के अंदर। आज के दिन जो सबसे बड़ी बात इस वक्त दुआई हो ये है कि हमें दुनिया में कैसे रहना चाहिए। तुलसी साहब के एक दौ के मुताबिक आपके सामने बात रखी जाएगी। उन्होंने फरमाया सत वचन आधीनता पत्रिया मात समान ज्ञानी सो हरि न मिले तुलसीदास समान। ये सत वचन को धारण करो, अगर सत वचन धारण करोगे और निम्रता रखोगे और उसके साथ सियालात की पितरता ग्रस्त आश्रम में होते हुए सवाय अपनी से कहीं और इसकी भावना न हो या पति भावना न हो, तो ऐसी हालत में वो प्रभु की दरगाह में जरूर मंजूर नजर है। अगर ना ये कर लो तो मैं तुम्हारा जामन हूं जामन। अब जमानत देते हैं कौन, तुलसी साहब, और सारे महापुरुष इसी बात की जमानत देंगे अगर आप ये कर लोगे। तो पहली बात क्या है कि सच को धारण करो, सच बोलो। आपको डायरी दिखाई गई गई है, सच वचन, सच बोलना सीखो, सच बोलने में जिसके अंतर सच है, सच किसको कहते हैं, गौर से समझो। सच उस चीज का नाम है जो दिल में हो वही जबान पर हो, वही हमारा दिमाग भी वही सोचे। जब तीनों मुझ पे कहो तो समझे ये बात सही। जब हम झूठ बोलते हैं हम अंतर से जानते हैं झूठ है, समझे, अंतर से जानते हैं कि झूठ बोल रहे हैं, दूसरे को धोखा दे रहे हैं। तो कहते हैं जिसके अंतर सच है, जिसके हृदय में, वहां मारे का आप बसता। जो इस बात को जान लिया कि मैं झूठ बोल रहा हूं, तो उस पहले तो सच को धारण करो हर एक काम में। तुम्हारे अंतर परमात्मा बैठा है और तुम्हारे अंतर तुम खुद भी बैठे हो। जब सब कोई उसमें बैठा है तो अगर उसके सामने तुम सच्चे हो तो कुदरती बात है कि वो सब के अंतर सच्चे। तो सच वचन जिसमें है, सच बोलना, इसलिए आप भाइयों को ये कहा जाता है कि अपने आप के सामने सच्चे रहो। बी ट्रू टू योर ओन सेल्फ। जो पहले दूसरों को धोखा देता है, दूसरों को झूठ बोलता है, पहले अपने आप को धोखा देता है। समझे नहीं मुझे। अगर सत को धारण कर लो डर जब भी सत को धारण कर लो और फिर अधीनता हो निम्रता हो। निम्रता कहाँ होगी? निम्रता वही की निशानी क्या है? निम्रता की निशानी है मीठी जबान होगी उसकी, अहंकार नहीं होगा उसमें, मैंपना नहीं होगा। अगर कोई कुछ कहेगा तो भी वो कहता है जबान नीचे अच्छा भाई ठीक होगा। तो निम्रता सबसे बड़ी, नीचे पानी जहां नीची जगह हुई वहीं खड़ा रहता, ऊंची जगह कभी पानी खड़ा नहीं होता। खजूर है बड़ी लंबी है, मनुष्य कोई फल खा नहीं सकता। तो जब तक निम्रता न हो, और सत होगा तभी निम्रता होगी। जब तुम देखते हो कि हमारे अंतर परमात्मा है, गुरु भी नाम देता है तो अंतर बैठता है, हमारे हर एक एक्शन को देखता, जो उसके सामने सच्चा है उसके अंतर परमात्मा आप बैठे। हम दूसरों के सामने सच्चा होना चाहते, अगर अपने आप के सामने सच्चे हो जाए तो काम बन जाएगा। और फिर निम्रता बनी, निम्रता बनी, निम्रता हो, निम्रता हो तब उसकी एक ही निशानी है क्या कि मीठी जबान होगी। निम्रता जिसके अंतर हो वो कभी कष्ट जबान नहीं होगी, ये निशानी है। तो बोला कहेगा अच्छा भाई तुम बोलेगा बहुत अच्छा। और ये सिर्फ सेवा जाए तो सेठ अगस्तन से पूछा गया था कि ये बताओ परमात्मा के मिलने का क्या तरीका है, तो फरमाने लगे फर्स्ट ह्यूमिलिटी, सेकंड ह्यूमिलिटी एंड थर्ड ह्यूमिलिटी। पहले निम्रता हो तब भी किसी महात्मा के पास जाता, नहीं तो अनेक आदमी अहंकार में, अमीरी के घमंड में, अमीर के गोह में या हुकूमत के नशे में वो किसी के नजदीक नहीं जाता, रह जाता दूर रह। फिर निम्रता हो तब भी जाए किसी के हाँ, जाए भी आगे भी निम्रता हो तो तब भी उसी की बात सुने। जब हम जाते भी है ना, हम सोचते रहते हैं ये आदमी क्या कहता, परखते रहते। परखने से ये है फलानी जगह ये लिखा है, फलानी जगह ये लिखा है, मैं बहुत कुछ जानता हूँ इससे भी ज्यादा, यही परखता रहता। परख परख कर जो वो वचन कहता फेंकते चले जाते। जो प्याला सुराई के नीचे रहे वो ही भरा जाएगा ना, और जो सुराई के ऊपर होगा वो कैसे भरा जाए। तो अगर सुन भी ले चीज मिल गई उसका उसको असर भी होगा, तो फिर भी नतीजा क्या होगा कि उसके अंतर निम्रता होगी। जिस फलदार दरख्त में उसकी शाखें फल से लदी जाए वो शाखें झुक कर जमीन के साथ लग जाती, जमीन के साथ। निम्रता कुदरती सिंहार है संतों का। हम लोग ऊपर से निम्रता करते भी हैं मगर दिल में ऊपर ऊपर से करते हैं, जिससे कि हमारा जैसा कौन। और तीसरी बात, ब्रह्मचर्य की रक्षा सियालाभ की पुत्र। सियालाभ पितर होंगे मन करके तभी शांति मिलती है। जिसका हृदय पुत्र है जिसमें झूठ नहीं, कहते सत बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, सच के बराबर कोई तप नहीं है और झूठ के बराबर कोई पाप नहीं। तो जिसमें सच है उसमें प्रभु आप हैं। तो पहली बात जो हमारे सामने है वो सत का बोलना। अगर आज मैं आपको अर्ज करूं, हमारे हजू जब थे तो उनके हाथ जो लोग जाया करते थे गौर से सुनो कान खोलकर, अगर कचहरी में भी किसी ऐसे पुरुष को जाना पड़ जाए तो वो बयान दे दे कि महाराज ये बात ऐसी है, तो कोर्ट वाले कहते थे कि ये ब्यास जाने वाला झूठ नहीं बोल सकता। क्यों भाई, हमें शिक्षो चाहिए ना, उसी पूर्ण पुरुष की याद में आप बैठे सत को धारण। सत में कई चीजें आ जाती हैं। झूठ आ जाता है, क्रोध आ जाता है, दिखावा कुछ अंतर से और कपट दिल में कुछ और जबान पर और हो, दिखावे को कुछ और, किसी तरह से किसी का हक मारना, किसी की बुरा चितुन करना, पीछे पीछे हो, तो ये सारे सत्य के ना धारण करने से आ जाती, कपट चोरी, किसी का हक मारना, क्रोध देना, धोखा देना, कपट करना, तो सत्य के ना धारने ये सारी सेना अपने आप आ जाती। अगर एक सच हम बोलना शुरू हो जाए कि सच सब मैलों को खो देता, क्यों? अगर जब आप पाप करते हो नहीं, सच निशानी क्या है पाप की? कि जो काम करके फिर आपको झूठ बोलना पड़े, समझे वो पाप, बात समझे, बड़ी भारी निशानी। तो सच को धारण करोगे, सच एक बार कहोगे, सौ बार पूछो वो सच वही कहेगा। अगर एक बार झूठ बोला है फिर सोचोगे मैंने उसको क्या कहा, उसको क्या सोचता रहता। तो लिखने वाले कहते हैं दो गोरा हाफा बाद, जो झूठ बोलने को गोरा बुद्धि चाहिए, हाफा भी चाहिए कि मैंने किसी को क्या कहा। तो उसकी प्रक्रिया, उसकी बात सुनते रहो। जिन्हें झूठ बोला आज कहेगा कुछ और, फिर दो चार दिन उसके दिल में खुटक रहती है, मैंने झूठ बोला कहीं और नजर न हो जाए, फिर दस दिन पर फिर बात करेगा, फिर कुछ देर के बाद उसी के ब्याज में फर्क पड़ जाएगा। तो आज आप बारह से यहां बैठे हो, पहला सब सीख लो हजूर के जीवन का, कि जो उनके दरबार में जाते थे बिचारी में भी जाना पड़ जाए, उसके बयान को सही माना जाता था कि ब्याज जाने वाला झूठ नहीं बोलते थे। यही हाल मुसलमानों के राज में था, जो सिख जाकर कभी कचहरी में सच बोल कहता था, कहता सिख झूठ नहीं बोलते। आप बताओ भाई, दो दो करने से दिल नहीं बनाया जाता या तो उसको तालीम को अपने हृदय में धारण कर, तो सच्चे मानों में किसी महापुरुष की याद मनाई जा सकती है। तो जिन्हें आप बैठे हो, खुश किस्मत हो, ऊपर से साउंड बरस रहा, उसकी याद में बैठे हो, उसको कोई सबक तो सीख नहीं है। पहला सबक है ट्रूथफुलनेस, सच को डालो, झूठ नहीं बोलो, कपट नहीं रखो, प्रेम और धोखा नहीं दो, किसी को कहो, किसी को कुछ, किसी को कुछ, जो सच बोल रहे हैं उसके उसको को डर नहीं। झूठ वाले हर ख्याल है ये बात ऐसी न हो जाए, ये ऐसी न कर, एक को कहता तू न कहना, दूसरे को कहता ऐसा न कहना, मेरा आखिर झूठ जाहिर हो जाए, बात समझ रहे। तो पहली बात सच को दान, सच बचे है आधीनता निवरता, जिसके अंतर हम कहा रहा है लोभ है, अपने मान अकल पर या अपनी हुकूमत पर या अपने जोर बाजू बल पर गुमान है, वो कभी निवरता के बचन लिखी जबान बोल जाओ भाई निकल जाओ, दो चार गाली निकाल देगा। अगर उसके दूसरे के अंतर महापुरुष के पास जाने से क्या सबक मिलता है कि मानव जाति सब एक है, सब आत्मा देहधारी है, आत्मा प्रभु की अंश है, कौ कभी राम की अंश, सबको जीवन आधार वही है। नहीं तो जिसमें नौ दरवाजे होती हम भाग जाए, भाग नहीं सकते, वो ताकत हमको उसके अंदर बांध रहे। जब ये सही नजरी मिल गई तो कुदरती बात वो देखेगा कि सब के अंतर वही आत्मा प्रभु की है, सर वही जीवन आधार बैठा है, तो फिर वो किसको बुरा मानेगा, किससे झूठ बोलेगा। तो निम्रता उसमें रह नहीं जा रहा, कितनी निम्रता करे। दसम गुरु साहब ने मिसाल दी है कि टोपची जब गोला भर लेता है चलाता है तो आप नीचे लंबा पड़ जाते। तो निम्रता जब दिल से अंतर में अहंकार ना हो, सत का जीवन हो, फिर ऐसे पुरुष के अंतर ही निवृत्ता असली विश्व में आ नहीं सकती। तो उसकी एक ही निशानी है निवृत्ता की, क्या? निश्चित नीमी नाम का गुणते नहीं, जवान मीठी हो, दुश्मनी गायों से भी जवान मीठी, अच्छा भाई तेरी बनी जवाब में तरक्की नहीं होगी। निमित्रा का ये निशानी है, और फल क्या है फल यह है कि एक आवत गाली एक है उल्टुट वही अरे ना उल्टो तो वही एक एक बात समझ गया। तो एक बात जो आज के दिन हमने जीवन में धारण करना है वो सत बचो, सत को धारण करो, झूठ प्रेम से बचो, रयाकारी कपट चोरी से बचो, अंतर से और बाहर से और आगे और पीछे और ये नहीं करो। भ्रोगशाई किसी को भरोसा देकर उसको धोखा देना, धोखा दे रहे हैं ना, पहले अपने खुद जीतो। तो पहली चीज है जहां सच है वहां आप करिए सभी सब कर, जहां सच है उसके अंदर सच बस रहा है, उसकी जबान में भी सच है और उसके अंदर वो खुदा मालिक बसता है, वो प्रगट है, जब वो प्रगट होता है तो उसी से सब चीज मिल सकती है। तो इसलिए महापुरुषों ने कहा तुलसी साहब ने कहा तरम न दूसर सत समाना अगम निगम प्राण प्राण बखन, कि सच जो है ना ये इस जैसा कोई धर्म नहीं। कहते सारे पुराणों ने ग्रंथों पोथियों ने यही पुकार कर कहा वो सत को धारण करना ही ज्ञान की साची शुद्ध है, जिसकी शुद्ध ख्याल में भी सत है। ख्याल में पहले हम ख्याल को धोखा देते हैं अपने आप को जानबूझकर करते हैं, उसकी हालत क्या ताका साचा थे, उसके सारे कर्म सत्य होंगे सच्चे, किसी धोखा नहीं प्रेम नहीं आगे और पीछे और ये वो नहीं। हाँ आठ पैर 64 घड़ी साई से तिमे वो समझो प्रभु से जुड़ा, जो उसको धोखा नहीं दे रहा उसके अंदर क्या बल नहीं प्रेम नहीं वो उसका हजन नाजन समझता। हमारे जो फरमाया करते थे कि 5 साल का बच्चा हो 5 साल का उसके सामने हम कोई पाप नहीं करते, तो गुरु जब नाम देता तब तो मैं बैठ जाता हमारे हर एक कर्म को देखता, अरे भाई उससे क्या छुपा। हमारे अधूर में अगर कोई खास बात ये थी कि जो आदमी सच आकर कह देता था उसकी रक्षा करते, और मैं समझता हूं अगर मेरे में कोई गुण नहीं था, एक बात जरूर थी उनसे कभी झूठ नहीं बोला, कोई बात उसी महाराज जैसी था। तो पहली बात गुरुजी साहब ने भी यही फरमाया, कहते हैं कि सत्पुरुष को उपदेश किया कि मालिक को हाजिर ना दे, गुरु के अंतर मालिक प्रगट, जब नाम देता है साथ हो बैठता, अरे भाई उसे झूठ क्या, वो घट घट में बैठा, अगर उसकी याद है तो किसी को भी धोखा नहीं दे। तो पहली बात जो मैं आपके सामने याद करना चाहता हूँ वही धर्म के बराबर सात बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, क्योंकि एक झूठ बोलता है और 100 झूठ बोलने पड़े। सत्य एक बार बोलो 50 हो तो वही सत्य, एक बार झूठ बोलो उसको छुपाने के 50 और झूठ बोलने पड़ते हैं। जानते हृदय सत्य है झूठ, जिसके अंतर सत्य है उसका दुनिया से तलक टूट जाता है और उनके हृदय प्रभु आप बस जाते, कहां के हृदय आप सच की कैफियत सुनी आपने, सच बोलना कितनी भारी बरकत रहता है, सच बोलते सारे पाप धो जा सकते। अगर फर्ज करो तुम किसी का बुरा किसम कर रहे हो तो भाई क्या सोच रहे हैं, सच बोलोगे तो कहोगे ना मैं झूठ मैं ये कर रहा है, इसलिए वो पाप नहीं रहेगा छोड़ दोगे। कोई काम करो जो सच बोलना पड़ जाए तुमको उसके लिए झूठ बोलना तो समझो वो पाप। इसलिए कहा झूठ के बराबर कोई पाप नहीं, एक झूठ करके उसे 100 झूठ बोलने पड़ते उसको छुपाने के लिए और फिर भी वो छुप नहीं सकते। हमारे झूठ एक मिसाल सुनाया करते थे, एक शीशे की बोतल है उसमें अचार है या मुरब्बा, जो योगी का ही रखता है वो देख लेता है उसमें क्या, मगर वो पतला पोछता है फिर समझाता है कि भाई देख। हमारे जो एक बड़ा अजीब कायदा था, फर्ज कर आप आए हो ना, आप कुछ पाप करके आए हो, आपको नहीं आपके साथ जो खड़ा उसको झाड़ देंगे, हे खबरदार, वो अपनी जगह मरा जाता था समझे। तो जो ना समझ लोग होते हैं वो क्या कहते हैं, कई लोग ये कहते थे देखो ना जिस दिन हम पाप करते जाए हुजूर बड़े खुश होते, हमें कुछ नहीं कहते, अरे वो देखते मरीज ज्यादा बीमार है शायद कभी पंजाबी मिसाल है ना, ओके लड़की को उपदेश देती है ये तू सुन नून करने कर देते हो नून चढ़ो तो धीरे चलेगी इतनी का वो पर्दा पोष होता है। ये ना समझो कि वो नहीं जानता, ये चौके में कभी ना रहना, वो जानकर पर्दा पोषा है और उसको धोना चाहता है। मारना नहीं, कोई माता बच्चे को मारेगी नहीं, गर्मी से भर भी जाए तो प्यास से तो धोएगी फिर सीने से लगाएगी। तो कहीं को ये ख्याल पड़ जाता है, हजूर के वक्त भी ये ख्याल था कि जब हम पाप कर देते हैं हजूर बड़े खुश होते, बात समझे असल बात क्या। तो झूठ एक बार बोलने से 50 आज से छोड़ दो तो क्या हो गया, ये सच्ची यादगार होगी हजूर के दिन मनाने की। पहली बात जब ये बन जाए तब और कुछ की भी उम्मीद हो सकती है, इसलिए कहा नानक साथे को सच्चा ट्रुथ इज अबव ऑल एंड ट्रू लिविंग इज स्टिल अबव ट्रुथ। सच सब से ऊंचा है, मैं सच्चा और सच्चा सच्चा जीवन सांस दिली सांस धोई ये सच से प्रभु से भी ये निशानी हमेशा याद रखो। कहते ये सच सबना का खत्म है और सब पाखंड पोत पा, बाकी बनावट दुनिया को धोखा दो प्रभु को कैसा दोगे अंदर में बैठो। तो इसलिए पहला काम जो है वो सच बोलना है, मन करके वचन करके कर्म करके अंदर होगा तो सच बाहर भी निकलेगा। तो इसमें एक सच के आने से सारे पाप धो जाते हैं अपने, अगर ये बन जाए तो उसके साथ दूसरी की निम्रता आ जाए। तो निम्रता दो तरह की होती, एक तो बारी बारी में निम्रता क्या है फर्ज करो। हम लोग एक मिसाल दूंगा आपको, एक कैशियर है खदान की, उसके बाद 1000 रूपया लाख रूपया, अब लाख रूपया उसका है नहीं, वो ऐसे ही अकड़ा अकड़ा फर्म है, लाखों का मालिक हूं तो कब तक है। हम और चीजों के किसी के हो रोने पर उसे आप अहंकार करते, तो काज में बड़ी अच्छी पोशाक कर दी और पोशाक के सीने वाला कौन है दर्जी, वो पहन कर अकड़ा फिरता, अरे भाई क्रेडिट जाए तो दर्जी को जाए ना जिसने अच्छी पोशाक बनाई, कहने आके अकड़ा फिर, ये झूठा अहंकार है। इसमें लोग आम लोग फंसे रहते, एक फर्ज करो जिसम बड़ा अच्छा खूबसूरत है, अरे खूबसूरती किसने दी, पिछले कर्मों के रिएक्शन से प्रभु ने बख्शी, और उस खूबसूरती का अपना क्रेडिट तो कोई नहीं, खाना पीना अच्छा भी रहा, एक फकीर था उसके पास एक आदमी गया, कहले जी मैं बहुत खुश हूँ मुझे लोग बाजार से चलने नहीं देते, कहले कोई बात नहीं गुलाब ले लो, गुलाब ले नहीं उसको 40-50-10 साल दूसरे ने उनके चेहरा गिर गया, बस खूबसूरती जाए खूबसूरती का सच्ची खूबसूरती आत्मा की है, जिसकी आत्मा में सच है, जिसकी आत्मा में प्रभु की याद है। गुरबानी में आता कि सच्चा खूबसूरत कौन इंसान है, जाके कट फिर वसे प्रभु प्रगट, वही सच्चा खूबसूरत है। प्यार आ जाए प्रभु की याद उभार आए तो तेरा क्या कहता नहीं, तो चाहे किस गई है उसके ख्याल की। तो इसलिए गुरु नानक साहब एक फतवा देते हैं, नानक ते नर असल खर बिन गुण गर्व करा, असल में उनका क्रेडिट नहीं, ऐसे ही उनका हर हमारे पे चले, वो गद्दे हैं गद्दे। अगर आपको अच्छा खूबसूरती मिली है, जय प्रसाद तेरा सुंदर रूप सो प्रभु सिमरो सदा लो, प्रभु ने बख जाए, जय प्रसाद तेरी नेकी जात तेरी बड़ी ऊंची कुल बनाई है, सो प्रभु सिमरो सदा निरात, उसमें बख जाए, एक अमीर के घर पैदा कर दिए। जय प्रसाद आ रहा हूं कंचन दे ही, अगर तुम्हारा शरीर बिल्कुल निर्विघ्न कोई बीमारी नहीं लावो इसराम श्री प्रभु की बरकत। तो इस पर जो कि गुमान करना है ये गलती। तो चार चीजें तन जोबन और फुलड़ा ना छेड़े दिन क्या, धन का होना, जवानी का होना, खूबसूरती का होना या फूलों का खिलना, कितने दिन रहेगा वो? दस का शायक आज यहां कल वहां, पब्बन के लिए पत्ती और टोल पर जमुना, जैसे पत्ते आखिर सूख जाते हैं, दस से बड़े हरे भरे होकर आखिर सलाह आती है गिर जाते हैं। तो इन चीजों पर मान करना कहां तक दुष्ट है, महापुरुष कहते हैं कि ये बात ठीक नहीं। इससे झूठे मान कहां करे जब सुपने को जा, इस सुपने की तरह इस मान किस बात का है, इनमें से कुछ तेरो नहीं, नानक क्यों बखान। कहते मैं खोल कर तुमको बयान कर रहा हूं, दुनिया की किसी चीज पर मान करना मैं आलम मैं फादर, जरा सा संस्ट्रोक हो जाए दिमाग सोचने से रह जाता है। मैंने देखे ऐसे किसी संस्ट्रोक हुआ, जो पढ़ा लिखा था सब भूल गए, ये हाथ है हाथ का नाम भी याद नहीं था, क्या भरोसा। तो वो काया अति सुंदर है, काया कामण अच्छ वाले हो फिर वसे जुटा, वो काया अति सुंदर है जिस चिंतन प्रभु प्रगट निवास है, तो सब चिंतन प्रगट नहीं, जिसकी आत्मा बाहर झूठे मान बढ़ाइयों से हटकर अंतर्मुख उस आत्मा को प्रभु जो जीवन आ रहा था उससे जुटती है, तो उसके चेहरे बेटा खास किसी आंखों में कशिश बन जाती है, फिर सच्चे सदा सुहागन गुरु का संस्मरण, वो सच्चे प्रभु के करके वो सदा के स्वाह को पालो। इसलिए जो आदमी हासिल करे उस प्रभु के गुण आवाज गाने में, अगर आप आलम हो ना, आपके इल्म से लोगों को धोखा देकर किसी का हाथ मारना, किसी का खून निचोड़ना, पॉलिसी पॉलिटिकल सामने या दरपर्दा ये वो कर, मैं कितना चाहा किसी को मैं दाव नहीं देता, इलम इसलिए नहीं, इलम इसलिए अगर ज्यादा है तो प्रभु के गुनावा करो, उसको लोगों को पेश करो कि वाकई परमात्मा है, उसके गुनाह गाने दे सबको। अगर प्रभु ने दौलत दी है तो वो सब मैं बस है भूखे भगवानों को खिलाओ, दंगे दुरंगे भगवान चल रहे बांट कर, अगर मतबा दिया है प्रभु ने तो किसी के काम, प्रभु ने दिया है ना, आज कुर्सी और कल उस पर कोई और बैठ जाएगा, परसों कोई और बैठ जाएगा, तो जो समय प्रभु दे, तो असल में तो ईसा क्या कहते हैं कि इंसान में सबसे बड़ा कौन आदमी है, तारीफ दी है कि हमारा भाई कौन है, हम किसको भाई समझते हैं, कबीर साहब कहते हैं कबीर सब थे हम बुरे, हम तज पलो सब जो है, या हम सबसे कम गुण रखते हैं, हमसे सब ज्यादा रखते हैं, जिन ऐसा कर जानिया मीत हमारा को, वो हमारा मित्र, क्या हम जानते थे, हम ये जानते हैं, हम बहुत कुछ जानते हैं, हम बड़े आलम हैं, हम ये हैं, अरे भाई दूसरों का भी तो वैसे ही हक है, समझो वो क्या करते, जब तक ये ना हो काम नहीं बनता, तो निम्रता बड़ी भारी चीज, जब तक निम्रता नहीं काम नहीं बनेगा, और निम्रता अगर बन भी जाए तो भी दिखावे जाहिर जो निम्रता वो किसी काम की नहीं, हम उसको धोखा दे रहे हैं, तो सच होना निम्रता ही से सच्ची इबादत हो सकती, धोखा नहीं दे रहा ना, और सबसे आदर भाव से बरता जा सकता, निम्रता हो, जिसमें निम्रता नहीं, किसी को दोस्त है उसको बुलाया, दूसरे को नफरत कर किसी गाली निकाल दी, दूसरे को अपने बराबर ना समझे, अरे भाई सबके अंदर वही बरकत है, जब ये जान लेगा क्यों किसी को बुरा भला कहेगा गाली निकालेगा ये कहेगा ये होगा, खासकर जिसके अंदर अच्छा स्वभाव होगा सब कुछ चीज कर। और इसलिए कबीर साहब ने कहा दीन गरीबी बंदगी, दीन गरीबी बंदगी सर्थ आदर भाव कहे कभी इतने बड़ा जाम में बड़ा स्वभाव जिसका स्वभाव अच्छा मीठी जो बात अच्छा हंस कर बोलता किसी को लेना कृष्ण बोलते किस पर रुकता अपना पहले आदर भाव अगर सब मैं उसी को जानता फिर सबको आदर भाव करेंगे कभी तो स्वभाव अच्छा हो तब भी काम है नहीं तो हम कई बार जबान की तरफ से किसी गाली निकाल देते हैं किसी को नहीं कह देते ऐसे लफ्ज करते हैं पीछे अगर दौड़ा जाए तो हमको आप शर्माई ये चीजें हैं किसी महापुरुष दीनता या निम्रता कमजोरी के बाद आप कहते शायद कमजोर हैं कमजोरी का नाम नहीं भाई ये बड़ी भारी एक बरकत है वो ईद का जवाब पत्थर से नहीं देना चाहते वो निम्रता से काम निकल सकता है तो सख्ती से नहीं आग अपना दर्जा रखती है जब जलकर राख हो जाए तो माथे पर लगाई जाए तो निम्रता बड़ी भारी बरकत है इसलिए क्राइस्ट ने कहा ही वो इंसान ही दैट इज लीस्ट अमंग यू तो मैं से जो अपने आप को सबको नीचा समझता है तो है आदमी जो समझता द सेम इज द ग्रेट जो अपने को जाने नीचा सोई जिन्हें सबकी सारे महापुरुष एक ही बात है बानिए पढ़ने के लिए नहीं हमारे हजूर में एक सबकी बात कही कि निम्रता कहती उनके बाहरी दर्शन करने से ऐसे जैसे निम्रता चमकी लोग कहने महाराज आप बड़े महात्मा है निम्रता से मैं कर रहा हूं क्या कहने अभी नाव समुद्र में क्या जाना क्या यहां तक फरमा देते थे कि सात बिली पिए खाकर बिली हट के चली इसका क्या मतलब था समझाने के लिए था कि निम्रता बड़ी भारी थी इसी महापुरुष की जीवन बनाने के लिए उसकी जीवन में गुण देखो क्या है उसको धारणा मुझे धूप की दया से इतनी आजादी थी किसी हालत में मैं उनके पास बैठ सकता था रात को दिन को की क्यों सिर्फ देखते रहने वो क्या करता एक्टिव किसी काम में भी हो ना अपना एक्टिंग करता तो महात्मा तो प्रभु का नमूना है भाई उसके अंदर प्रभु देता है उसमें वही गुण है जो प्रभु में है अब देखिए प्रभु को कौन से गुण भाते आपको कौन सा गुण किसी का भाएगा तो मैं एक मिसाल देता हूं एक असामी खाली हो गई समझे अर्जी मंगवाई गई हैंड राइटिंग में सब करो दो चार असामियां हैं तो वो जो ऑफिसर है ना उसका हैंड राइटिंग बड़ा खूबसूरत है और जो को फिरता देता देता जिसका हैंड राइटिंग है सब उठा लेता अभी से क्योंकि अपने में गुण हो ना वही दूसरों में अच्छा लगता अब प्रभु को कौन से गुण भाते हैं भाई जो प्रभु के अपने गुण है प्रभु में जो अपने गुण क्या है देख कर अंडित कर लो गाली वाले को भी रोटी दे दो क्या कहीं मुनकर है कोई मुझे सहनी लाखों रोटी देता है कि नहीं मैं अमेरिका में गया वहां क्या दिन है कई दिन था उन्हें रशिये के लिए वीट देना मंजूर कर लिया मुझसे अखबारों वालों ने पूछा ये जो एक्शन किया क्या नहीं दीजिए ये ठीक किया है या गलत वो बड़े अजीब सवाल करते ना कैसे ठीक किया जज इग्नोरेंट चिंतन ऑफ गॉड हाँ तो बच्चे उसी के कि नहीं बात समझ रहे तो जब उसको सबसे उसको जानता है निम्रता उसी जो उसको सब में देखे निम्रता भी तभी आएगी ना राइट अंडरस्टैंडिंग होगी तभी काम करेंगे ना तो पहली बात सत्य को धारण करो भाई नहाने का आपका या दिन मनाने का इधर तभी पूरी हो सकती है कि कोई गुण जो उनमें थे तुम धारण और मुझे मैं अपने हाल करूं अगर हजूर को कोई बात मेरे में ऐसी तो तीन साल में होती है अगर कोई बात पसंद आई वही साफ हुई थी तो पूछा मारा जाते कई प्रोपेगेंडा के खिलाफ होती हुई भी वो सपोर्ट करते तो सच होना बड़ा जरूरी है सच में सब कुछ आता है जू प्रेम दगाबाजी रियाकारी कपट चोरी किसी का हक मारना आगे और पीछे और जो उसको निम्रता उसको जानता सब में जहां सच है वहां आप हैं और वो सब में उसी के बच्चे हैं, तो किसी को क्यों धोखा दे, किसी को क्यों बुरा चित्र करे। और फिर न्यूनता होगी तभी काम बनेगा। दसों गुरुसाहब ने फरमाया कि जितने इंसान बड़ा होता जाता है ना, उतनी उसमें न्यूनता बढ़नी चाहिए। हम जैसे बड़े होते माफ करना, हमारी न्यूनता दूर हो जाती, गुस्सा क्रोध ईर्ष्या ये वो बढ़ जाती। तो मनुष्य उसमें हमने फायदा क्या उठाया? जैसे जैसे बाल शैन हो वैसा हमारा हृदय साफ हो जाए, वैसे हमारे तक वो गुनाह जो प्रभु के अंतर है सब तो ठीक, अगर नहीं आए तो जीवन से हमने फायदा नहीं उठाया। इसलिए सारे महापुरुष यही कहते हैं कि इंसान को निर्भरता सीखनी चाहिए। तो कबीर साहब ने कहा, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पंछी को साया में ही फल लागे अपनी, उसके साय के लिए कोई नहीं बैठ सकता, और फल बहुत ऊंचे कौन जाने। तो इंसान वही है जो किसी के काम है। अगर इंसान किसी के काम नहीं आया, और काम तब ही आएगा ना जब सबके अंतर उसी को समझे। तो दो चीजें याद रखो हमारे रूम में, ये सबसे थी एक पंक्चुअल थे अपने वो कहते, और जो इकरार करते थे पूरा दर्श, ये दो गुण हैं किसी महापुरुष के जीवन में। जान लो उसकी जीवन जो सुखा था अपने जीवन में धारण करो, तब तो सच्चे मानों में आप पुजारी बन गए। नहीं तो चेला किसको कहते हैं? जिसके अंदर गुरु के चीले या कपड़े फिट आ गए, चेले के माने यही। पंडित गुरु दत्त थे, तो पंडित गुरु दत्त थे, उनको कहा गया कि स्वामी दयानंद की लाइफ लिखो। उन्होंने कहा बात अच्छा, महीना दो महीने चार महीने छह महीने साल गुजर गया, क्यों भाई कहां पहुंच गया, मैं लिख रहा हूं, और साल दो साल गुजर गए, क्यों भाई कहां पहुंची किताब, कह रहे मैं बड़ा तेजी से लिख रहा हूं। जब तीन चार साल गुजर गए तो लोगों भाई कैसी किताब तुम लिख रहे हो, उनका जीवन क्या अभी तक खत्म नहीं हुई, चले उनके जीवन लिखे जो उनमें गुण थे उन्हें अपने में धारण कर रहा। किसी महापुरुष की जीवन बनाने की मैं आपके सामने दो चीजें खिला रख रहा हूं, एक सत्य का धारण करना, उनके जीवन से मैंने पेश किया जो सच जाकर क्या दे काम से, और सच कहने के बाद फिर झूठ बोलना नहीं पड़ता, एक झूठ बोलकर दस और झूठ बोलने पर उस झूठ को छुपाने के लिए। फिर निम्नता उसी में होगी जिसमें अहंकार नहीं होगा, गुमान नहीं होगा, झूठे गुमान नहीं होंगे। आखिर किस बात का भरोसा, लाजवारी बाहरी लिहाज से भी अंतरनी लिहाज से भी। तो सत्य मानो में इनका फल यही है कि ठंड को शांति हो, जिसके अंदर सच है निमुत्ता है उस वो बड़ी मुसीबतों से बच जाता है, जिसके अंदर नहीं है तो नतीजा क्या झूठ बोलना पड़ता है, कई तरह से मुसीबतें उठानी पड़ती हैं उनको। तो इसलिए हमें जबान से वही बात कहनी चाहिए जो दिल में हो, जो दिल की तर्जमानी करे। जब बात को करने लगो ना पहले सोच लो मैं यही सोच रहा हूं, मेरा दिमाग यही सोचता, मैं जो कह रहा आप उसी को देखेंगे फर्क मानो। मैंने सच की तारीफ की थी, जब आपका दिल जबान और दिमाग मुत्तफिक हो। और इसलिए हमें जरूरत किस बात की है, न्यूनता कैसी धारण करनी चाहिए। तो कई तरह की न्यूनता का बयान किया कबीर साहब ने, निर्णय किया है कैसी न्यूनता हो। कहते हैं जो धरनी में खे, पहले रोड़ा हो रो बात का तद मन का अभी वहां, कहते रस्ते के रोड़े बन जाओ सब मान छोड़ दो। फिर कहते हैं ये भी घूमना ठीक नहीं, क्यों पंछी को ढूंढे रोड़ा मारने के काम आ सकता है ना। दोबारा आप ही कहते हैं जो धरनी में थे جیسے مٹی ہوتی ہے زمین اڑتی ہے ایسا ہو جانے کا یہ بھی یاد رکھ لیجیے. پڈ اڈ لاگے جب ہندھیری چلتی ہے منہ سے اسے بچ جاتے ہیں نا, پھر کہتے ہیں پانی جیسا ہونا چاہیے, پھر آپ ہی کہتے ہیں کبھی پانی ہوا تو کیا ہوا, سیتا تاتا ہو کبھی گرم کبھی سرد, پھر فرمانے لگے پھر کیسا ہونا چاہیے, ہر جن ہری جیسا چاہیے, ہری جن کو ہری جیسا ہی ہونا چاہیے. اب ہر کیسے ہو, ہر کو تو دیکھا نہیں, تو ہر کے گن ہر بھاؤنے سے گرو تے پا, بات سمجھے, گرو کے اندر وہی صفات ہے جو ہری کے اندر ہے, اس نے دیکھا. آپ گرو کو جو کرتے تھے گناتے ہیں تو دھارن کر ہر جیسا تب ہی ہوگا نا. تو ہر ایک مہاپرش نے یہی آدرش پیش کیا, بی پرفیکٹ ایز یور فادر از ان ہیون, ایسا پورن بنو جیسے تمہارا پتا آسمان ہو, جیسے ہو ویسے کہو. بی غرور نمر, غرور جو ہے نا نمرتا کے الٹ ہے, اسی طرح پریم ہلا جس کو ہم حکمت کہتے ہیں یا زاہداری یا پاکھنڈ زبانہ سازی کہتے ہیں, ہمیں کیسے کرنا پڑتا ہے, وقت گزارنا پڑتا ہے. ارے بھائی یہ صدق دل اور سچے وہار کے ہوتا ہے, جس کا سچا دل ہے اس کا صدق بھی سچا ہے, وہ ان سب آرائشوں سے بچ جاتا ہے, پریم سے ہیلے سے حکمتوں سے زاہداری سے پاکھنڈ کرنے سے زبانہ سازی سے بچ جاتا ہے. ایک سچ داد کرنے تو گرو نانک صاحب نے بڑے ایک تھوڑے لفظوں میں کہا, کیا جے لوڑے چنگا اپنا تان پنو نیک سدائی, اگر آپ دیکھی جاتے ہو تم میں گن ہے تو بھی سمجھو کہ میرے اس میں بڑے بھاری گن ہے, میرے مقابلہ پربھو سے کرو نا بھائی, جو دے کر کبھی اس کو دہراتا نہیں, پرفیکٹ ہے پورن کہاں بیٹھے ہیں. تو نمرتا کی نشانی یہی ہے کہ انتر میں مٹھاس ہو, میٹھی زبان ہو, تو دوسروں کو مٹھاس ملے گی, زبان میٹھی ہوگی دوسروں کو مٹھاس ملے گی, اگر زبان میں مٹھاس نہیں تو دوسرے کے انتر میں وہ خمیر جب اٹھ جائے گا نا. تو نمرتا میٹھی زبان سب گنوں کا ساتھ, مٹھت نیمی نام کا گن کے نہیں تک, میٹھی زبان نمتا بھری یہ سب گنوں کا ساتھ. دو چیزیں آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں, اب دو چیزوں کے دھارن کرنے سے دیکھنا یہ ہے کہ ہم کہاں پر پہنچے, اور اس کو اگر دھارن کر لیں تو ہمارا دنیا میں جو جیون بدل جائے گا, اور مر کر بھی کچھ اور حالت بنے گی جو ساری دنیا اس کی تعریف کرے گی. اور سارے مہاپرشوں نے یہی کہا, لوڈ ایک مہاتما ہوئے ہیں چین میں, وہ کیا کہتے ہیں کہ ایک نیک انسان وہ ہے جو پریم نرم دل دیا کا بھاؤ کفایت شعار دین پر غریبی رکھ, کفایت ساری کسی کے کام آئے گا, یہاں فضول خرچ نہیں آ سکتا, اس کے اندر پریم ہوگا سب کے لیے, دل نرم ہوگا دوسرے کو دکھ دے کر دل اس کا پسیجے گا, دیا کا بھاؤ ہوگا, دینتا ہوگی غریبی ہوگی, انسان وہی کہلانے کے حقدار ہے. تو اس لیے کہا گیا کہ انسان وہی ہے جس کے اندر انس اور محبت ہو, پریم کا پتلا ہو. جو مہاپرش ہوتا ہے وہ اس کا نمونہ ہوتا ہے, سبل بڑھے پریم رس رنگوں کے چاؤ سات کے سن, جیسے پیالہ ہوتا ہے نا بھرا ہوا ابر ابر کر اوپر سے اوور فلو کرے, ایسے وہ پریم اور پربھو کے نشے کے اوور فلوئنگ پیالے ہوتے, ان کی زبان جس کے اندر پریم ہے زبان بھی میٹھی ہوگی, نمرتا ہوگی دوسرے کو ٹھنڈک دینے والی ہوگی, ہمدردی بھری ہوگی دوسرے کے دل کو ابھار دے گی. یہ ہے ہماری پرفیکشن جس کو ہمیں پانا ہے, جب تک یہ نہ بنے کام نہیں. तो कबीर साहब ने कहा ऊंचे पानी ना टिके, ऊंची जगह पानी नहीं ठहर सकता। नीचा हुए नीचे ही ठहरा, नीची जगह होगा ना, अब नीचे का पानी नीचे जाओगे तो पियोगे ना, टेले पर बैठ कर कैसे पियोगे। ऊंचे पानी ना टिके नीचे ही ठहराए, नीचा हो सो भर पिए ऊंचा प्यासा। मिसाल बाहर की बड़ी आम फैन देकर समझाना चाहते हैं कि नीम का बड़ा भारी गुण क्राइस्ट ने इसीलिए कहा परमात्मा क्या करता, गॉड रिजिस्टर्स द प्राउड, हम अहंकारी आदमी को, हम मान गुमान वाले आदमी को मुकाबला करता है, बट गिव इट ग्रेस टू दी हम्बल, जो देवता बढ़ा है उसको दिया बाप ने, तो देवता का कितना भारी गुण हुआ। होए सगल की रणका तो आओ हमारे पास, ये गुरु साहब क्या है, तो देवता दिल की हो तब बनेगी जैसे सत का धर्म जीवन होगा, तब वैसे नहीं बने, जब राइट अंडरस्टैंडिंग होगी सही नजरी होगी तब ही, वैसे नहीं हो सकती। तो इसलिए करना क्या हुआ, दो चीजें आपके सामने जो कबीर साहब ने कहा ना, सत्य वचन आधीनता, दो चीजें हुई, तो इसके बदले ही से जीवन आगे कल्याण हो सकती है, जब तक ये ना हो काम नहीं बनता। इसलिए महापुरुष ने इस बात पर जोर दिया है कि हमें कुछ करना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, पहली बात सत्य धारण करो, प्रभु ने ये जिसम दिया है इसको कायम रखो, पहली बात इसको बाहर से भी साफ रखो और अंतर से भी साफ रखो, ये हरि का मंदिर है, हम मंदिरों को कितना साफ सुथरा रखते थे, वो इस सच्चे हरि मंदिर के बाहर मंदिर बनाए गए हैं, मगर हम बाहर से तो साफ रखते हैं, हम आपको ना लाखों रुपए का टॉयलेट हर एक मुल्क में खर्च हो जाता है, कोई घर खाली नहीं जाते पांच दस रुपए का टॉयलेट न खर्च होता, मगर अंतर से हमारे इखलास भरी पड़ी, अंतर से भी सफाई चाहिए। अंतर की सफाई कैसे हो सकती है, सबसे पहले व्यवहार शुद्ध हो, जिस जरिए से कोई कमाई आती है ना वैसी असर होगा, जिसे किसी का खून उतरा हुआ है, हक मारा हुआ है, किसी को बदवा लेकर लिया है, किसी का हक मारा है, वैसे ही असर होगा। भजन कैसे बनेंगे, भजन बन नहीं सकते, जिस जरिए से अन्न आया है ना उसका असर पड़ता, जिन हाथों से अन्न गुजर कर रहा है उसका भी असर पड़ता, चार्जिंग होती है। तो इसलिए पहली बात यह है, उसके साथ आचार भी शुद्ध हो, जिनके लिए हाथ से आता है अगर उसका ख्याल काम ही है तो काम से खाओगे वैसे वैसा ख्याल पैदा हो, तो जीवन का बड़ा भारी असर है, और उसके साथ शुद्ध आहार क्वालिटी जो है ना खुराक की सात्व जैसा अन्न तैसा मन। तो पहली चीज इस अंतर से सफाई करने के लिए खट कहाल की छत हो गए हिंदा निकला देख ली किसी कमाई हो समझे, और पकाने वाले भी लाने वाला भी ख्याल पे चलो पकाने वाला भी हो। हम क्या करते हैं पता, अल्टा हमारी रोजी साफ नहीं माफ करना बहुत आने से आदमी वही लाए गिना जाता है जो पांच के पचास बनाता हो, इस बात की परवाह नहीं किसी का खून नुचड़ा या क्या उसमें आया, फिर वो लाया जिस तरह से जैस हाथों से गुजरेगा वैसी आदमी पकाने वाले क्या लाने वाले क्या कर किस ख्याल में जाते हैं, और पकाने वाला गाली गाओ मर जाओ खाना ऐसा हो जाए ऐसा हो जाए, अब रोटी में उसका खा रहे हैं जो खाएगा उसका क्या हाल होगा। बात है कई लोग कहीं आज भजन जी बना भाई सारी बातों का ख्याल करो क्यों नहीं बने, मुझे याद है 1921 की बात है, मैं हजूर के पास आया था 1924 में, पर उनके पहले दर्शन करते थे उनकी दया थी, मैंने देखा नहीं था, मैं समझता गुरु नानक है साहब है, तो मैं 36 में अकाउंट साफ लेकर गया,
वहां मुझे एक ऑर्डरली मिला अर्दली रोटी पकाने के लिए फील्ड थी। मैंने उसको कहा भी देख मैं तेरी जीवन का तो जीवन नहीं ले सकता, मेरे एक बात याद रख जितनी देर तू रसोई में बैठा रहे वहां किसी को ना आने दे और तू सुमन करता रहे। उन्हें क्या बात किया दो तीन दिन तो किया, एक दिन ना किया मेरा रात का खराब 12 बजे जब सबसे उठना रहा ख्याल को खराब हो मैंने उसको बुलाया उसी वक्त 12:30 1 बजे बताया आज कौन रसोई में आया था तेरे क्या जी कौन मुझे मेरे सामने झूठ मत बोल क्या रे यहाँ एक आदमी ऐसा बात है बात समझे हमें क्यों नहीं मालूम होता आगे मनु मैल चढ़ी पड़ी शोर और बढ़ गई तो क्या फर्क पड़ता यहाँ आगे तोला छेमासी की हालत हो सो तो भाई माशा भी रति भी असर कर बात समझते हो। कई लोग आकर कहते आज हमारा बजट नहीं बना भाई देखो अपनी तरफ क्या कर इन चीजों का असर पड़ता तो बाहरी जीवन रेजिडेंट इधर भी चाहिए उसके साथ छत डाल दे टूट कर लग मैंने आज किया टूट शुरू से। अब एक और चीज जबान पर जरा काम हुआ जबान से बड़े उपद्रव होते ऐसे उपद्रव होते हैं जो शायद सब चीजों की बुनियाद बनती आपको पता है दो तरह से जुबान से उपद्रव होते एक तो खाने का चीज आजा के खूब खा नतीजा क्या खाने वाला समझता मैं खा रहा हूँ कुछ मुद्दे के बाद वो खाना उसको खा लेता जोर से ज्यादा जो खा जाए ना हजम हो उसे बीमारी पैदा करनी होती मेदा हजम करने के काबिल ही नहीं रहता जुबान पर काबू रखो और जुबान पर क्या है मीठी जुबान देवता भरी। महाभारत का युद्ध कैसे हुआ पता है कौरव जा रहे थे पांडव के महल की तरफ दूर से वो नजर आता था नीचे जो फर्श था वो ऐसा मार जैसे पानी लारे मारता उन्हें पंजाबे खेचे धोती ऊपर खड़ी थी क्या ले यहाँ अंदर की औलाद नहीं होती। इस वचन से महाभारत का ये गुजर हिन्दुस्तान की सारी सभ्यता नाश हो गई समझे हिन्दुस्तान की सारी सभ्यता नाश हो गई घर घर में क्या यही तो जबान के गए मैं सारी बात तो भूल सकता हूँ उसकी जबान नहीं भूल सकता तलवार का जख्म तो महीने बाद में भर जाएगा अरे भाई जबान का जख्म हाथों पर तो जबान के दो तरह से उपद्रव होते इसको कंट्रोल और उसके साथ एक और चीज जो निहाय जरूरी है वो तीसरी बात परिया महात्मा ब्रह्मचर्य की रक्षा शास्त्र मर्यादा के मुताबिक जीवन बनाओ ब्रह्मचर्य की रक्षा के साथ क्या करना ब्रह्मचर्य की रक्षा यही नहीं कि आप सिर्फ 10 इंद्रियों जो राखे बास ताकि आत्मा में प्रगाश जो 10 इंद्रियों को बस में कर ले उसी के अंतर असलियत खुलती है क्योंकि तो खुलने के लिए क्या करना हो ख्यालात की पितरता तो ख्यालात की पितरता के लिए हर इंद्रिय को दर्द करना पड़ेगा आंखों से असर आता है कानों से असर आता सुन सुनता खुराक पर ना जमे तो जैसा तैसा मन विषय बगार बढ़ते स्पर्श ये सारी चीजें उसके उकसाने की कारण अगर एक इंद्री भी आप खुली छोड़ दोगे ना तो भी आग बढ़क उठे तो ब्रह्म के असल माने ये है ब्रह्म के पाने के लिए जो आचरण चाहिए वो 10 इंद्रियों को दमन करने पड़ेगा और उसके साथ ब्रह्मचर्य की रक्षा बड़ी भारी रूप है इसके बाद काम नहीं होता। हजरत मोहम्मद साहब को कहा गया यही बात कि भाई क्या करना चाहिए तो फरमाने लगे भाई दो बातों को तुम समझ लो बाकी को मैं जिम्मेवार हूं وہ کیا کیا کہنے لگے دو عضو، ایک تو دو ہونٹوں کے درمیان جو ہے اور دوسرا جو رانوں کے درمیان، اگر اس کو تم قابو کر لو میں تمہارا خدا کی درگاہ پہ دامن ہوں. یہ تلسی صاحب کہہ رہے ہیں سات بچن آدی ہنتا پرتیا ماں سمان یہاں سے ہری نہ ملے تلسی داس بھواں. تو ایتھیکل لائف تو ہو سداچاری جیون کرو، اس کے لیے ضروری کیا بات ہے؟ ہماری خواہشات کم ہو، یہ بڑا ضروری ہے. جن کی خواہشات زیادہ ہوتی چیز بڑے، تو سمپل لیونگ، سمپل لائف، سمپل لیونگ اینڈ ہائی تھنگ. جن کی خواہشات کم اتنا سکھی، جن کی خواہشات زیادہ اتنی اور ساتھ نیولتا ہو، اور ساتھ ساتھ عمل. عمل نہ تو کیا با؟ آپ کو اتنی باتیں پتہ لگی، اگر خالی سن لی اس کو جیون میں دھارن نہیں کیا تو کیا فائدہ؟ تو اس لیے کہا اناؤنس آف پریکٹس از مور دین ٹنز آف تھیوری. آدھی ٹانک جو عمل ہے اس کا اثر سو من کتنی سے زیادہ. تو عمل نہایت ضروری چیز ہے. اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہاتھ بھی آج اٹھائے تھے انہوں نے، وہاں پر دو گھنٹہ بھجن کریں گے ہم، خوشی کی بات ہے. ارادے ہیں تو منزل کے، مگر چلنا نہیں آتا. ہمیں کہنا تو آتا ہے مگر کرنا نہیں. یعنی کہ آپ پنکچوئلٹی جو میں نے آپ کی تھی نا، اور کسی کو جو اقرار کرو اس کو صحیح دھوکھا مت دو. اپنے آپ کو سمجھ سکتے رہو جو پربھو بھی تم میں ہے، تم بھی تم، تمہارا گرو بھی اسی میں بیٹھے. اگر یہ دو چیزیں بنا لو تم سنت بن سکتے. اور یہی آج کا کام ہم کل پر چھوڑیں گے، کل کا پرسوں چھوڑیں گے، پرسوں کا چوتھ چھوڑیں گے. کل کل کرتے کل کل بچ جاتی ہے، کل کال کے ہاتھ. یہ ہے چیزیں جن کے نہ دھارن کرنے سے کام خراب ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ابھارنے والی چیز کیا ہے؟ ستسنگ. ستسنگ ستسنگ کس کو کہتے ہیں؟ کسی عامل پش کی شوبت کا نام ستسنگ. جین ست گر تین ستسنگ تمہاری، عالموں کی، فاضلوں کی، گرنتھاکاروں کی، چاتروں کی شوبت کا نام ستسنگ نہیں. ستسنگ کیول ایسی ہستی کی شوبت کا نام ہے جو عامل پش جم ملے، ابھار ملے، دیکھنے سے اس کی منڈل کی ریڈیشن سے چارجنگ ہوگی. سمجھے؟ کیونکہ اس کے اندر یاد رکھو ہوتا ہے کہ ابنڈنس آف ہارٹ اینڈ مین سویٹ، جو دل میں بس ہی حالت ہے وہی دل سے نکلتی. جو بھگوان بچے نکلے اس سے چارج ہو کر نکلے. جو ہوا برف کے ساتھ لگ کر آئے گی وہ ٹھنڈی آئے گی، جو ہوا آگ کے ساتھ لگ کر آئے گی گرم آئے گی. اگر ہمارے دل میں ٹھنڈک ہے، سب کے لیے پیار ہے، سب کا بھرا ہے، جھوٹ نہیں، پریم نہیں، سچ ہے، نمرتا ہے، خیالات کی طرح، نتیجہ جو رہے اس کا سب دوسروں کے دلوں میں جائے. اگر دل میں کام کرو گی شاید واش یہ وہ ہے، کتنے میٹھے لگو اصل تو گرم ہوگا. ستسنگ نہایت ضروری چیز ہے. اگر یہ نہ ملے تو یہ کام کرو. یا ایسے پورو پش کی یاد میں ایک سے زیادہ بیٹھے تو بھی ریڈیشن ہوگی. کرائسٹ نے کہا اگر ایک سے زیادہ جو بیٹھتے ہوئے یا آئیں گے. اور اس میں ایک اور چیز جو نہایت ضروری ہے کہ ہم ہیں کمزور، ننگی نہائے گی کیا انہیں چوری کی اپنی لمبی مثال ہے. کمزور آدمی ہمیشہ سمرتھ کے آگے ہاتھ کے ساتھ پرارتھنا پریئر، جہاں دنیا کے سب طاقتیں ہار جاتی ہے وہاں پرارتھنا کامیاب کر دیتی. تو سکھ کا جیون پرارتھنا کا جیون. ہمارے دور سے آج 11 صدیوں کے دن 10-11 بجے سے ڈاکٹر جان سنسا کئی بار میں نے آگے لے کیا ہے میں تھا ان کے روز یہ ان کی بخشیشی کے پاس بیٹھنا نصیب ہوتا تھا. تو ڈاکٹر جانسن نے سوال کیا کہ ہمارا پرارتھنا سکھ کو کرنی چاہیے کہ نہیں. فرمانے لگے سکھ کا جیون ہی پرارتھ سمرتھ پرش کیا ہمیشہ مل گیا. کیا ہوگا سمرتھ پرش کی جو دل سے آواز نکلی وہ ریڈیشن ہوتی اور باہر ملتا. سکھ گرو کو یاد کرتا اور گرو سکھ کو یاد کرتا. سدگ اور سکھ کو جیا نال سنوارے. یہ باتیں میں آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں کہ میری جیو میں ان چیزوں سے فائدہ ملا. آپ کو پیش کرا ضرور کے کردہ بات کرنا جیسے فائدہ ملا آپ بھی فائدہ اٹھا سکتے. ان کی بخشش بڑی کمال ہے اب بھی کام کر رہی. تو پرارتھنا بڑی بھاری چیز. پرارتھنا وہی ہے کہ جو دل سے جس میں دل کا جذبہ ابھارا نمتا بھرا بالکل ہار کر اس کے در پر بیٹھ گیا. جہاں یاد رکھو پرارتھنا کون سی قبول ہوتی ہے یہ بھی یاد رکھو. جو ہار کر کسی کے دوارے پر پڑ جائے وہاں قبول ہوگا. جہاں پر ہم کو اپنی بازو بل بدھی بل پر حکومت کے بل پر یا اپنے کسی سامان پر بھروسہ رکھتے ہوئے ہم پرارتھنا کرتے ہیں وہ قبول نہیں کرتے. ہار پڑے سوامی کے دوارے دیجے بدھ بوگے کا ہار کر مہاراج. یہ گیتا میں بھگوان کرشن کیا کہ سب دھرموں کو چھوڑ کر میری چاہیے. یہ بڑی بھاری مدد کرتی تھا دم دم پر سکھ پرارتھنا کرنی چاہیے. ہم اپنے جاؤں بنا تھا ہم بہت کچھ بن گئے. اگر بن بھی رہے تو اس کی کرپا پر اور دے گا. ہم بعد وہ گرو کو بھول جاتے ہیں سمجھتے ہم بہت بڑے ہو گئے. نتیجہ کیا ہوتا دکھ میں آپ کو سوامی جی کے بانی میں آتا گرو کے کنارے کر دیتے ہیں اپنے آپ کو پوجا کرانے لگتے. تو یہ چیزیں ہیں جو نہایت مددگار چیزیں ہیں. اس کے ساتھ دو چیزیں اور رکھ لو. کیا ایک اگر کوئی غلطی ہو جائے مہاراج جا کنفیشن کرو چھپا ہو گئی صاف گئی پربھو کو بہاتی گرو کو بہاتی. پردہ پوشی کس سے کرو گے یوسف تھا وہ زلیخا کہاں گیا ہمارے جو سنایا کرتے تھے. تو اس کو اندر کمرے میں لے گئی اپنا ارادہ کوئی ایسا ویسا پیش کیا. تو اس نے کیا کیا بت لگا تھا جس کی وہ پوجا کرتی تھی اس کو کپڑا ڈالنے لگی. چلے یہ کیا کرنے لگے چلے یہ ہمارے کام کو دیکھے گا. چلو تیرا تو پردے سے چھوئے میرے تو ہر وقت دیکھ گا. پار برہم نکٹ کرتے گرو پورے کا شن اپدیش پار برہم نکٹ کرتے پہلی بار اس کو ہر وقت حاضر نہ ہائی حاضر نہ ہم نہ دیکھے لادا بادہ ہم نہ اگر نہ دیکھے اس کے لیے تو مطلب نہیں کوئی دیکھتا نہیں. ایک مہاتما کے پاس دو چلے گئے. انہوں نے کہا بھائی ایک ایک کبوتر دیا ان کو ایسی جگہ مار کر لو جہاں کوئی نہ دیکھتا. ایک ہو گیا دس کی آڑ میں سب مار کر آ گیا آدھے گھنٹے میں آ گیا. دوسرا بےچارا صبح سے چلا پھرتا پھرتا بتیری ٹکرے ماری آخر رات کو ہار کر آئی کہ مہاراج میں نہیں مار سکا. کیوں نہیں کہنے کہ میں اس کو دیکھتا آپ کو کوئی نہ دیکھے میں اس کو دیکھے گی مجھے دیکھتا. اس کو قبول کر دیا. باقی تو آپ بات سمجھو جب تک یہ نہ ہو کام نہیں. غلطی ہو تو کنفیشن دیا آگے بھی ہمیشہ ہر ایک مہاتما کے لیے کہا جا رہا ہاں. اس کو کہہ دو تمہارا جو آگے وہ کہتا آگے نہیں گرا سے ہمارے روٹ سے نا کیونکہ میں میرا ماسٹر کئی مہاپرشن ہے مگر حضور سب تاج ہے. کسی نے کہنا مہاراج مجھ سے جو غلطی ہو گئی اول کنفیشن کرنا بڑا بہادری کا کام ہے سب کے ساتھ میں نے یہ غلطی کی. تو کرتا اپنے لوگوں کو چھپاتا. پھر کہنا مہاراج اچھا بھائی تم اس کا کوئی بوجھ لیتے ہو پاپ کا ایسی کر کون لے. پھر کہنے کہ اچھا بھائی ایسے آپ آگے ہی مت کرو بھجن کرو سمجھے نہیں. یہ سبق ہے سیکھنے کنفیشن. حضور بڑی اچھی ایک مثال فرمایا کرتے تھے کہ دانا ہو نا کتنا بھی چھپاؤ آخر اسے پاک پڑتی ہے پھر منہ سے پھوٹنا پڑتا ہے. اب نہیں پھوٹتا دس جب آتر ہو جاتا ہے مہاراج میں اتنے بڑے گناہ کے آگے آتے. ارے بھائی پہلے کیوں نہیں گناہ بخش ہوتے, کنفیشن کرو. اور کنفیشن کا ٹھیک ہے کیا آگے مت کرو یہ لوگ. کرائسٹ تھا اس کے پاس ایک بیوی کو لے گئے, کہنے لگے کیا بھائی اس نے برا کام کیا. کہنے لگے تمہارا شریر کیا حکم دیتی ہے. کہنے سنسار کر دو, پتھروں سے مار مار کر مار لو. کہنے لگے اس کو کھڑا کر لو, کھڑا کر لو. اچھا اس پر وہ پتھر پھینکی جس نے خود گناہ نہیں کیا. کون کر سکتے ایسا کہنے ڈو نو مور جا آگے مت کرو, بھجن کرو گے کنفیشن. یہ باتیں ہم لوگ نہیں کرتے. پرارتھنا میں نے یہ باتیں پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے. اور اس کے ساتھ ایک بات, فار گیو ان فارمیٹ, کسی سے کچھ ہو گئی اس کو معاف کر دو اور بھول جاؤ. ہم معاف نہیں کرتے, دلی دل میں اس کی یاد پڑی رہتی ہے, وہ بڑھتی رہتی ہے. فریکوینسی سے کبھی زبان سے کبھی پیچھے کبھی آگے کبھی یہ وہ پھر نتیجہ کیا اپنا بیڑا گھر کو. اپنے بیڑا گھر کو تو اس لیے نہیں معلوم ہوتا کہ من آگے میلا اور شور بڑھ گئی کیا بات. جس کو تم بخش دیتے ہو نہیں پھر بھول جاؤ, دوبارہ دل میں خیال اچھا بھی غلطی ہونی پڑتی. انسان پیارے ہیومن, تو یہ چیزیں ہیں جس کو دھاری کرنے سے جیون انسان کا پلٹا کھا سکتا. جب تک یہ نہ بنے کام نہیں بنتا. اس لیے مہاپرشوں نے ہمیشہ اس بات پر زور دیا کہ سات بچن کو دھارن کرو, اس کے ساتھ نمرتا, پھر برگ دیتی ہے کہ اگر یہ تین چیزیں آپ کر لو گے تو کہتے میں تمہارا الزام ہوں. رم چند کی رکشا کے بارے میں نے یاد کیا تھا کہ دس اندر جو راکھے بعد ساری انگلی کو دمن کرنا پڑتا ہے ایک ہونے سے, کیونکہ ایک سوراخ بیڑی میں سوراخ ہو نا وہ بھی کھلا تو بھی پانی بیچ میں آتا. تو ہر ایک سنسکار آتے رہتے ان کے ذریعے. اس لیے کہا انگلی جیت پانچ دوست رہ, جنجیوں کو جیت دیتا ہے. کام کرو لوگ کار کہاں سے ہم پر حملہ کرتے ہیں, آنکھوں سے کام, کانوں سے غصہ, کروپ. جیسے بھی کچھ باتیں کرے غصہ اور بھڑکتا ہے. تو غصہ جب آیا تو پھر اونچا بولتا ہے, ایسا بولتا نہیں, منہ میں جھاگ آتی. سپرچ سے گلے لگ, منہ سے گلے لگنے سے منہ بڑھتا. تو ہر چیز کا کوئی نہ کوئی ٹیکا ہے. تو اسے ساسو نے کہا مرن بندو پاتے, بندو کا پار کرنا موت کے برابر ہے, جیونگ بندو دارنگ, جو بندو کی رکشا کرتا ہے وہ زندگی ہے. چیسٹی لائف سیکسوالٹی کرتے جن کا گرستاش میں وہ شاستر مریادا کے مطابق جیون بنائے. وہ کیا کہتی ہے جیون ساتھی کو ساتھ لینا, شادی کرنے کا مطلب دکھ میں سکھ میں غریبی میں امید میں ہر حال میں ساتھ دے اور دونوں مل کر تو بھی کہتے ہیں. سمجھے, ایک فرد بال بچوں کا پیدا ہونا ہے سارے فرد. پرانے زمانوں میں رشی منی مہاتما کے جب ایک آدھ بال بچہ ہوتا تھا جنگلوں کی راہ لے کر. آج کل تو جنگل ہے نہیں نا, دنیا میں کام کرنا پڑے, ایڈجسٹ کرو اپنی لائف. اس لیے یہ نہایت ضروری ہے. پرانے زمانوں میں 24 برس کا برمچر سب سے تیسرے درجے کا تھا, لوئسٹ. وہ تو سب کو دہن کرنا پڑتا. آج کل 10 سال کے بچوں کو پوچھے جا کے ستیہ ناش ہو گئے. ہماری جب छोटे होते थे भाई बहन पैदा होते थे पूछते थे कहाँ से आया, हमको कहा जाता है जिदाई देगी कितने जीवते थे। आजकल छोटे बच्चे को वो देखते हैं हम क्या करते हैं, तो अगर हम औलाद आगे बच्चे को अच्छा करने से अपना जीव बने, हम जो हमारे बच्चे की आने वाली नस्लों के लिए पहले नमूना बनो आप, फिर दूसरे बच्चों को ऐसे घर में वो कहते हैं ना पंजाबी मिसाल है, जो पोतों के बिगड़े होते हैं वो कभी समझते नहीं, उस्ताद क्या करें, उस्ताद आगे जाए और सत्यानाश गली मालों में खेल कूद के बच्चे और गुरु बेचारे क्या तुम आपको। तो ये चीजें हैं जिनको हमने, और 36 साल का सेकंड क्लास था, ये थर्ड क्लास है 24 साल का, और फर्स्ट क्लास 48 साल, कोई एक साल भर का भी माफ करना व्रत करके उस सवाल नहीं मिलते। कम से कम आज के दिन आप ये धारण कर लो, मैंने 3 बातें आपको, एक सत को धारण कर लो, दूसरे निर्मलता, तीसरे ख्याल आती है बाल बच्चे दो चार चार हो चुके थोड़े, याद रखो इतनी आबादी बढ़ रही है दुनिया में कि 1 मिनट में 9 आदमी बन जाते हैं दुनिया में मारे छोड़कर, 10 सालों में क्या होगा, आदमी आदमी को खाएगा कि नहीं। वो जो फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं वो सत्यानाश कर रहे हैं, ब्रह्मचर्य की रक्षा रखनी चाहिए, सच्ची फैमिली प्लानिंग यही है। तो आपने संजीव को जीवन बनाओ, खुराक से चावल बनती है एक किस्म का रसा है, इससे खून, खून से मांस, मांस से चर्बी, और चर्बी से हड्डियों, हड्डियों से अंतर मिज जो है, और मिज से बीज, इतनी कीमती चीज। ये जीवन का आखिरी एसेंस है, तो निचोड़ है किस बेदर्जी से हम इसको, जिसका ये सही है बीज का संभाल कर रखना ही ब्रह्मचर्य का पालन है, ये फिजिकल होता है, और फिर दूसरा मेंटल, ख्याल में भी ठीक हो। कोई कहते हम करते आए थे ख्याल करना, तो क्या तू कर आखिर क्या निकले। तो मेंटली के इलाज है सत्संग और लगातार सिमरन, मन को खाली नहीं रहने दो, बड़ी मोटी बात, या काम में लगा रहे या सिमरन, या अगर वो दुनिया जारी हो जाए या महापुरुषों की जाए, तो ये चीजें हैं जिससे मन तो ठीक हो सकता है। और बाहर से भी जिस मकान की बुनियाद मजबूत है उसका आपको पता हो, दिल भी सही, मकान भी याद दे रहे होंगे, जिसका दिल से दबाव की संख्या भी इसी से बनता है। तो हमने महापुरुषों की तरफ नजर मार कर देखना वो क्या कहते थे, हमारे रूट है, मैं बार बार उन्हीं का जिक्र करता हूँ, उनकी याद है, उनकी जीवन से सब जो सामने आए हैं। तो वो उनकी शादी 25 साल से पहले हो गई, पुराने जमाने में मुकलावा होता था, मुकलावा साल साल दो दो साल इसे नहीं आया करती थी, पहले कोई नहीं होते, तो पहले मुकलावे में 25 साल की इनकी उम्र होगी, वो मर गई दूसरी शादी जो हुई उसके बाद। तो फिर 6 महीने सिर्फ उनकी घरवाली उनके पास रहे, बाकी बच्चों के पास, क्यों भाई कभी 6 महीने तुम जुड़ा भी रहे हो पास रहने पहले दर, किस मुंह से हम हलवा खाना चाहते हो, माफ करो। ये जीवन से हम सब सीखते थे, और यही सब महापुरुषों ने, छुट्टी जाना पहले गुरु के पास जाना, बाबा जी जादव सिंह जी के पास, उन्होंने हुक्म देना तो घर जाना नहीं तो वहीं से नौकरी करवा। तो 6 महीने का अंदाजा था कि 6 महीने वो सिर्फ घर में रहे। तभी आपको पता 9 साल से कितना तेज था, बगैर लाउड स्पीकर याद हो सड़क के पार आवाज जाती थी, उस हस्ती का यादगार में हम बैठे देख रहे हैं कि किन चीजों ने उनकी जीवन को बनाया, उनको पूर्ण सम्राट गुरु मिले, गाइडेंस मिली, रिसेप्टिव बने, गुरुमुख बने। मनमुख का काम नहीं है भाई, गुरुमुख बनने का काम। गुरु के बाद वो अपने जीवन में धारण किया, वो ऐसा जीवन बनाया, आज उनके हम याद में बैठे। और मेरा अपना यह है कि वर्ल्ड फाइव सोलिजन किया, उनका जीवन बनाने का एक तारीख मैंने रख दी। दुनिया के महात्मा आगे हमें यही महापुरुष मिले जिन्होंने कहा कि कॉमन ग्राउंड रखो, सब समाजों के भाई मिल बैठो, समझे, सदाचार सदाचार और प्रभु की याद। बस तो ये मैं आज कर रहा था, यही बातें सारे महापुरुषों ने की, कोई नई बात नहीं, पर जिसने धारण कर लिया उसी का काम है। हमारे जो सुनवाते थे, अगर जुलाब की गोली भूल कर भी खा दे दस लग जाते, खाए तो सही ना, हम खाते नहीं, हम कहते करते नहीं। तो क्राइस्ट ने कहा था, यू लव योर वाइफ एज क्राइस्ट लव द चर्च। तुम पति अपनी से ऐसा प्यार करें जैसे क्राइस्ट ने चर्च के साथ से पुत्र प्यार। याद रखो, गृहस्थ आके विषय उकानों की मशीन नहीं है, ये गलत समझा है। अगर हमने एक पद बाल बच्चों का पैदा हो, आप समझेंगे तो आगे बच्चे ने तो सत्यानाश होना, आने वाली नस्लों के लिए हम जिम्मेवार हैं उनके बिगड़ने के लिए। फिर कहा, जब प्रभु की याद में बैठो, एक बात खास कर है उनकी, वो कहते हैं यू लव द लॉर्ड एज इफ यू हैव नेवर हैड एनी वाइफ। फिर जब प्रभु की याद में बैठो कि कभी इसकी थी को नहीं थी ना पुरुष, बिल्कुल पूर्ण याद प्यार। ये सबक ही नहीं हमने महापुरुषों की जीवन की। स्वामी रामतीर्थ थे, मैं इसलिए कोट कर रहा हूं आपको कि जिन चीजों से मुझे समझ आए उस महापुरुष की जीवन से, वो आपके सामने खोल खोल कर रखी जाएगी। पहले आप लोगों का इम्तिहान था बारिश का, कि कोई ना आए, धूप का पहले है, बारिश चली गई, खत्म हो गई। कितने भीगे भाई, क्या हुआ? ये रहमत थी भाई, इस बात को समझो और पले बांधो। तो रामतीर्थ ने कहा था, स्वामी रामतीर्थ, सो लॉन्ग एज यू वाइफ्स एंड हस्बैंड डू नॉट लर्न टू लिव केस लाइफ, देयर नो बेटरमेंट फॉर यू। जब तक इस पुरुष अपने पुत्र जीवन नहीं बनाते हैं, तब तक हिन्दुस्तान के लिए कोई योग ही नहीं। आज स्वामी रामतीर्थ का नाम सब कुछ है, रामतीर्थ मिशन चल रहा है। आखिर किसी गुणों के लिए चल रहा है भाई, तुम भी बन सकते हो। तो ये चीजें मैंने सब आपके सामने रखी। तो मैंने जैसे पहले अर्ज किया है कि ब्रह्मचर्य का केवल नौसानी ख्वाहिशात को रोकने का नाम नहीं, ये सब इंद्रियों के भोगों की ख्वाहिशों पर काबू पाए। जब तक इंद्री जीत पांच दो तेरा, तो इसकी गर सतपथ की खोज का जतन है। तो तीन चीजें आपके सामने रखी गई हैं। इसके लिए पहले जो कहा सारा जितना समझाए, मौलाना रूम साहब ने कहा, तर्क शहवत को नजर खाई तो होश, अगर तो होश अपनी काम रखता है तो जीवन को पुत्र बना। गांव की शायद बाल बंदे चश्मे बहुत जिन्ना से बहोगे आंखें बंद हो जाएंगी, कान भी बंद हो जाएंगे, बार के भी और अंतर के। कई लोग कहते हैं हम बड़े होकर करेंगे भाई, तो गुरु साहब हम कहते हैं काली जिनी ना रावे थाली रावे को, ये तो काले बालों से अपना जीवन नहीं संवारा। सफेद बालों के साथ हो सकता है मर कोई कोई, वही जिसका संगम का जीवन देगा। गुरु अमरदास जी वृद्धावस्था में कहा उनका जीवन कैसे गया, हमारा हाल क्या होता है, न दिल काम करता है, न दिमाग सही है, डांस देखने से रह, काम सुनने से रह जाते हैं, मोहताज हो सकता है, बच्चे माफ करना टूटी चारपाई देकर डेढ़ी में लिटा देते हैं, हाथ में डंडा दे कुत्ते हाँकते जाओ और पोते खिलाते जाओ। राम आ गया किसी ने, कोई सदाचारी बच्चा हो उसकी सेवा करे, नहीं तो देखता रहे की तो। राम आया किसी ने टुकड़ा दे दिया तो देख, अब क्या कुछ उत्पन्न करेंगे। अरे भाई अब भी का समय है, आप भी कुछ करो। तो आज के दिन आपके सामने रोह के जन्म जन्म का टोड़ के जीवन से जो लाभ हम ले सकते हैं उसका क्या, हम जीवन अपना कैसे गुजारना चाहिए, कैसे आइडियल बना सकते हैं, उनकी जीवन से कुछ कुछ झलकें आपके सामने रखेंगे। इसको पल्ले बांधो और अमल में लाओ। दिमाग में खाली सोच लेना काफी नहीं। पहले मैंने जैसे अर्ज किया काफी इम्तहान था, वो कहने के लिए जाते हो वो सत्संग करने, जिसका काम है वो जाने। तो ये असल में रहमत थी, जो थोड़ी सी रहमत जिग जाए तो रह जाता ना। तो भाई मुझे जो समझ आया है कि चलो बैठ कर उसकी बारी जीवन के पास बैठ कर, बाकी एंट्री क्या था वो कल सुबह और कल शाम आपके सामने रखा जाएगा, जो मुझे समझ आई उनकी बख्शी से। और वो वही है जो हाईएस्ट तालीम उस सब पूर्व पुरुषों ने दी है, वो उनके जीवन से हमको मिली। यहाँ समाजों का कोई झगड़ा नहीं, सब समाज में सब में यूनिट इंसानों के, इंसान को एक जैसे एक उपलब्ध ने दिए। सबका जीवन आधार वही इंसानियत के लिहाज से मैन लेवल से एक है, आत्मा के लेवल से एक है, जो जीवन आधार है वो भी सबका एक है। इसके बारे में कल सो कल शाम जो मुझे समझ आई वो आपको सामने रखी जाएगी। मन इन चीजों को याद रखो, पल्ले बांधो, जो बातें आज कहेगी ये हमारे जीवन के हिस्से, इससे फायदा हो सकता, हर एक का जीवन बदल सकता। Every saint has his past and every saint has his future. जो अनुभवी पुरुष बना है पहले कभी हमारी तरह था, इसी अनु पीछे जरूर, और हम भी वो मिल सकते बन सकते हैं अगर पूरी हदायत और पूरी मदद मिल जाए तो क्यों नहीं होती। तो आज के दिन का मतलब जो बातें आपके सामने रखी गई इनको अपने जीवन में घटाना शुरू करो। जो खुराक हजम होगी वही ताकत देगी। मैं शब्द ले लेता हूँ, मैं समझता था कि उनके जीवन से जो सब मिल जाए, जो सब ग्रंथों पोछू का निचोड़ा रहने के लिए वो आपके सामने रखा गया। खुशकिस्मत हो हजूर के आज याद में बैठे हैं तो शुकाना है, जो सजीवन उनके जीवन से झलके मिली हमारे इसमें आने लग जाए, हम सुखी हो जाएंगे, जो हमारे साथ लगी वो भी सुखी हो जाएंगे। यही बेटी का सामान कोई एक शब्द भाई पढ़ो कोई
ये सोचा है इंसान तुझे दुनिया से जाना है, ये है सेल जो तूने सिला कुछ उसका पाना है, कभी ये सोचा है इंसान सताएगा किसी को तो सताया जाएगा तू भी, सताएगा किसी को तो सताया जाएगा तू भी, अगर दुख देगा औरों को तुझे भी दुख उठाना है, अगर दुख देगा औरों को, अगर तुझको खुदा ने बख्शा है कुछ इज्जत और रुतबा, अगर تجھ کو خدا نے بخشا ہے کچھ عزت و رتبہ امانت جان اس میں کچھ اضافہ کر دکھانا ہے امانت جان اس میں کچھ اضافہ کر دکھانا ہے کبھی یہ سوچا ہے گزارے سے زیادہ گر ملی ہے تجھ کو کچھ دولت گزارے سے زیادہ کچھ ملی ہے تجھ کو جو دولت غریبوں بے قصوں کے کام میں اس کو لگانا ہے کبھی یہ سوچا ہے انسان نمائش اور دکھاوا گر کے تیرے دل کو بھاتا ہے لفافہ کچھ نہیں چٹھی کا مضمون دیکھا جانا ہے لفافہ کچھ نہیں چٹھی کا مضمون دیکھا جانا ہے کبھی یہ سوچا ہے انسان اگر نخرا ہے یہ تجھ کو کہ صورت خوب ہے تیری اگر نخرا ہے یہ تجھ کو کہ صورت خوب ہے تیری اسے سیرت و خوشکاری کے زیور سے سجانا ہے کبھی یہ سوچا ہے انسان تجھے دنیا سے جانا ہے کبھی یہ سوچا ہے انسان صفائی باہری اچھی ہے اس کی کچھ اگر حد ہو صفائی باہری اچھی ہے اس کی کچھ اگر حد ہو اگر بے حد سے ملنا ہے تو اس کو بھول جانا ہے کبھی یہ سوچا ہے انسان اگر تو سادھو کہلاتا ہے تو کیا سادھنا بھی ہے اگر تو سادھو کہلاتا ہے تو کچھ سادھنا بھی ہے وگرنا سادھو کا جامع ریاکاری کا بانا ہے وگرنا سادھو کا بانا ریاکاری کا بانا ہے کبھی یہ سوچا ہے انسان اگر ہے نفس ناہنجار تیرے قابو سے باہر اگر ہے نفس ناہنجار تیرے قابو سے باہر تو عزت زور و فہم و علم و دولت دھول کھانا ہے کبھی یہ سوچا ہے ان کی اگر گویائی ہے علم و ہنر عقل رساں بھی ہے خودی کھو کر خدائی کو خدا کی راہ دکھانا ہے خودی کھو کر خدائی کو خدا کی راہ دکھانا ہے کبھی یہ سوچا ہے انسان سفر در پیش آنا ہے کہ جس کے واسطے ہیلا ہے نہ کوئی بہانا ہے چمن جو پھولا ہے ایک دن خزاں برباد کر دے گی خزاں جو پھولا ہے ایک دن خزاں برباد کر دے گی یہ گھر در ملک چھوٹیں گے بنا جن کا دیوانہ ہے یہ گھر در ملک چھوٹیں گے تو رہ لے اس جہاں میں چند دن اور رہ کے کچھ کر لے تو رہ لے اس جہاں میں چند دن اور رہ کے کچھ کر لے کیا تھا جو وہ پایا ہے کرے گا جو وہ پانا ہے تجھے اس دار فانی سے سفر در پیش آنا ہے کہ جس کے واسطے ہیلا ہے نہ کوئی بہانا ہے تجھے اس دار فانی سے یہ دولت جو تجھے باہر نظر آتی ہے دھوکا ہے نہ بن تو اس کا شیدائی تیرے اندر خزانہ ہے تجھے اس دار فانی سے اٹھا